विचार शक्ति और थॉट पावर इज अ सब्जेक्ट इन विच द ऋषिज हैव स्पेंट सेंचुरीज रिसर्चिंग अबाउट वॉट इज द रोल ऑफ पावर इन द एवोल्यूशन ऑफ मैन. एंड विचार शक्ति हैज़ बीन ऑल्सो यूज्ड for spiritual pursuits, and the rishis of Bharat or India have spent lives after lives in the forests of India to discover the role of thoughts in humans, because humans are composed of thoughts actually. Without our thoughts, we have no existence. And my last 10 years of coming again and again to Rishikesh, either alone or with groups, has been under the tutelage of Swami Shivanand Swami, or Swami Shivanand Saraswati as he was formerly called. And I have also written four articles under his guidance about food and nutrition, food and thoughts, life force and thoughts, mind and life force, yani pran aur vichar ka kya sambandh hai, aur bhojan, food एंड थॉट्स कैसे बनते हैं. तो ये बहुत सूक्ष्म इंट्रिकेट टॉपिक्स हैं. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ चैप्टर आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक अ समरी ऑफ माय ओन रिसर्च एंड एफर्ट्स एज वेल एज मेक अ स्मॉल वीडियो टू हेल्प पीपल इफ दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन साधना. Because efforts are always made, but the results don't come easily. And one of the main reasons of not succeeding in sadhana is that we don't realize our thoughts are very poor. So I have already written a short article on how to improve your thoughts. But today, that I wrote in 2014 only. But today I want to speak on how to increase the power of our thoughts. How to increase the power of our thoughts. Because we have never focused ourselves. We have never thought about it. That what am I thinking, and so on. So the main thing to know in the beginning is, what are thoughts? What are thoughts? So when God made us, when God created us, a part of God was transferred into us. That is, we are, कहते हैं ना, एक हम ईश्वर का ही अंश हैं, हम ईश्वर की ही creation है, right? So that creation या जो भगवान का एक अंश है हमारे अंदर, that is mainly in the मन, जो हमारा मन है उसमें प्रतिबिंब और रिफ्लेक्शन होता है ईश्वर का. एंड सिंस वी आर नाउ टू मच इन द वर्ल्ड एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू गो बैक टू आवर रियल सेल्फ, सो इट इज द रोल ऑफ द माइंड विच इज ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस. सो वन हैज टू रियली अंडरस्टैंड दैट वाई आर थॉट सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज The mind is composed of thoughts. जो हमारा मन है उसमें विचार सबसे बड़ी एक composition है. यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है. That is, the thoughts have the power to manifest. And thoughts have energy embedded. We did not know this, but as we become more focused, we realize that we are driven by our thoughts, means whatever we speak to ourselves is actually affecting us. Whether it is the very known and verbal words, but we didn't work on it. That means we were not aware, or we didn't have anyone to tell us that you have to see the construction of your mind. Yani aapka man kaisa hai usko thoda dekho, right? So thoughts have energy and thoughts have vibrations. Means because they have energy, they also vibrate. And as all the rishis have been telling us continuously, almost every day, that whatever we think will manifest one day. Means thoughts never die. Thoughts, unless manifested. So even before a proper thought is formed, it's a very beautiful science. I'm just making a short journey of what all I have found out, what I have written about so much, and it is a very, very fascinating subject, at least for me. So I realized that when I came in 2014 to Swamiji without any formal initiation or something, everything has been mentally, me and Swamiji have been mentally connected, that's all. There is no formal diksha, of no formal initiation. Since day one, moment first, he's been telling me that you were born with very good thoughts, but make efforts to manifest them. And the thoughts were of one's own spiritual attainments or spiritual progress. So then he told me that if you harness your mind, yani aap apne man ko sanjo loge, if you harness your mind, these thoughts will come up. Means the thoughts which are lying buried inside will come up. But you'll also have to do some actions, which I will tell you. You'll have to do some karmas. Otherwise, they will not reap. You can't reap those thoughts. So then I realized that he's saying that my good thoughts are very much lying down somewhere beneath. There is some surface. So then he told me that a mind is a storehouse. Means it is, you could say, a bundle of energy, or a powerhouse. That was the word he had given me, that our mind is a powerhouse provided it is composed of positive thoughts. Otherwise, it is not a powerhouse. It is a house of destruction. So the conclusion was that we must have positive thoughts, we must have constructive thoughts. And then he introduced to me another word which I hadn't used it for myself, and that was that power, the thoughts have the power to regenerate us. So that was another phase of my life when I studied and researched on how to regenerate ourselves, like regeneration of our mind through thoughts. It was taught to me that, see, the mind is a bundle of energy, but there are not formally, but you can divide your mind into three parts: the lowermost, the middle, and the top one. And simultaneously, Consequently, there are three levels of consciousness. Means, if we divide the mind into three parts, that is the conscious mind. Conscious mind means what we are doing presently, in which most of the time we are using a five panch indriya hum use kar rahe hain, dekh rahe hain, bol rahe hain, sun rahe hain, jo abhi hum kar rahe hain, this is the conscious mind. Then below that is the subconscious mind, means those thoughts and experiences and other perceptions which we have gained and are now deposited below the conscious mind, means this is unharnessed. And most of the people don't even touch this subconscious mind, right? And we don't even know how to go inside, leave alone harness it. But I'm talking only of positive thoughts. We are not taking into account the not so good, unpleasant and destructive and negative thoughts. We're not dealing. We are assuming all of us have very good thoughts, right? So then he told me that you have very good thoughts, but they are in the subconscious mind. So he told me that, okay, you apply your willpower. If you apply your willpower, these thoughts, the buried thoughts, dormant thoughts will become active. Ichha shakti lagao, chaho. You have to say, I want it. So it will come up on the surface. So he told me one way of reaching the subconscious mind, and that was, he said, look at me, whatever I decide I will do it, I can do it. So can you. You can also do it. And then he told me there is another mind. Ek aur man hai, yani man ka ek hissa hai, jo bahut niche hai. That is the unconscious mind, where rarely anyone can go. Very, very difficult. It takes lives after lives. But it is possible. And if someone has very good thoughts at the bottom of the ocean, and it will take a lot of effort, but if with the wish of God, if we can extricate those thoughts and then use it for regeneration of yourself and the world, then it is a very good omen for the world and yourself. So these are the three segments of the mind we have, all of you. Whoever is listening today, they also, everybody included. So this is like know thyself. This is who you are. So the mind has layers. Then what happens is, whatever we are thinking, a part of that energy always, as a rule, gets deposited in the mind. Mane ek ansh to hamara jo vichar ka hai, वो हम उस विचार के शक्ति से, यानी जो विचार में ताकत है, शक्ति है हमारी, उस शक्ति से हम वो शक्ति को यूज़ कर लेते हैं. यानी मन में विचार है, ये करेंगे, तो वो ट्रांसलेट होता है एक्शन में. बट रिमेंबर, अ पार्ट ऑफ दैट थॉट एज अ सीसी, लाइक कार्बन कॉपी और समथिंग, वी से इसका एक कॉपी इधर डालो, लाइक कीप वन कॉपी हियर. अ पार्ट ऑफ दैट थॉट इज डिपॉजिटेड इन अ माइंड. सो दैट इज मेड एज, दैट इज डिपॉजिटेड एज मेमरी. वो जो करते हैं उसकी एक स्मृति बनती है, राइट? सो आवर थॉट्स ऑल्सो हैव मेमरी. दैट्स वॉट आई अंडरस्टूड. दैट मीन्स when we revive our memory, we also get some old thoughts. So thoughts and memory, they are interrelated. So one part is that the mind is composed of three segments. Thoughts have power, thoughts have energy, thoughts are embedded in different sections of the mind. So most of the world, maximum people are performing on the surface. That is why they have shallow thinking. That means we'll have to go deep inside our mind. to get the good thoughts or to even go beyond thoughts. So that I'll discuss later. The other characteristics, ya jiska hum bolte hain ki hamare vichar mein aur kya gun kaise hain, like kaise hote hain hamare vichar ka swaroop kya hai. The other characteristic of thoughts is they travel. Thoughts are they are also embedded in us, but when we think of something, the thoughts travel. That means thoughts have their own consciousness. Hamare vichar ki chetna hoti hai. So agar hum consciousness level ke satah pe hai, yani topmost, like what is happening just now, who is there, ye kya, wo kya, so that is the present making or manufacturing of the thoughts. So this consciousness is different, and subconscious mind se jab hum operate karte hain wo consciousness alag hoti hai, aur unconscious mind se karte hain to wo level alag hoti hai, consciousness alag hoti hai, kyunki har vichar ki ek chetna hoti hai, yani every thought doesn't have the same consciousness. So when we are asked that how to increase the power of our thoughts, this also means that how to increase the consciousness of the thoughts. Right? Mundane, everyday thoughts, they don't have great consciousness. They are just here to complete a task or do some activity, and that is all. But the real man or the real person is not this. We as real human beings are the thoughts, jo vichar hamare andar bahut pehle ke pade ya humne bahut jo repeat kiya hua hai, jo vichar humne maximum repeat kiya hai ya jiski intensity humne bahut bada di hai, yani emotions involved hai usme, either sadness or happiness और सम काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, वो विचार हमारे बहुत शक्ति देते हैं. अगर किसी के अंदर है तो उसको जगाना चाहिए, ये कहने का मकसद है. सो देन आई रियलाइज्ड के थॉट्स कैन बी हार्नेस्ड, थॉट्स की वैरायटी है, राइट, एंड थॉट्स आर ट्रैवलिंग, एंड थॉट्स कैन लैच ऑन टू और जिसको बोलते हैं एंकर ऑन टू द थॉट्स ऑफ सम अदर पर्सन हु मे बी वेरी फार. मीन्स थॉट्स रेजोनेट, दे वाइब्रेट एंड दे रेजोनेट. सो हियर कम्स आर लेवल ऑफ अवेयरनेस और द रोल ऑफ आर अवेयरनेस, कि हम किस प्रकार के विचार प्रोड्यूस करें, और नोइंगली हम कैसी चेतना के साथ लैच ऑन करें, कि चेतना हमारी कैसी होगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. कि एंड वी डोंट नो बिकॉज वी आर इग्नोरेंट. व्हाट हैपेंस इज दिस इज हाउ आर थॉट्स मैनिफेस्ट, दैट व्हाट एवर वी आर थिंकिंग वी डोंट नो, अनोइंगली वी आर लैचिंग ऑन टू पीपल हु हैव द सेम थॉट्स एंड हु हैव द सेम कॉन्शियसनेस. So the danger is when there is a negative thought, so we are connecting to other similar negative thoughts. The good part is that if you have nice, positive, compassionate, reconstructive, regenerative, helpful, kind thoughts, or the thoughts of your own progress and spiritual progress, then we meet people who are of similar vibration, and we connect very well with them. That's why this bonding happens, and this is the relationship of a guru and shishya. That has nothing to do with the age, gender, any status. It doesn't matter. It is the mind that has got connected. So that means the mind has power, and the mind is like a magnet getting attracted to people. So now comes the question, or the main thing that we like to address, that even if we discover that our mind doesn't have any celebrating thoughts or any very positive thoughts, what do we do? And prior to that, there will be one question, natural question that should arise in people, that yes, we have very good thoughts, how to harness it, or what can I do with it? I didn't know that we can select our thoughts, we can germinate new good thoughts, so that it's a new me. If any of you have thought or haven't thought, please think about it. That if I want to reinvent myself, what is it that I have to do? The first thing we have to do is, we have to think in a new fashion. Whatever we have done in the past, that will not work now. Now, if you don't have very good thoughts, you can generate now. Correct? So, any category, wherever you fall, if you dive inside, you say, okay, I see, I can't fish out anything which is so great, I never gave it a thought, give it now. And it is the job of the Guru who will tell you that yes, you have. And there are, in the end, I will just tell you that what is the process, what do we have to do, right? So how to increase the power of our thoughts means, if you have very, we'll not talk about negative thoughts, because I somehow don't like this. Because they're always destructive. And we all know what happens if you have negative thoughts. So the cause and effect, the law of cause and effect is always there. So let's not discuss that, because we know negative thoughts are going to be destructive. They will do harm to the society. That is the end of the spectrum, one end of the spectrum. And the other end of the spectrum is very good thoughts. So let's leave out this, because it will make you feel weak, and it doesn't give a good feeling also. So we are going to only discuss that. Imagine yourself that you are at this end of the spectrum. Very good people, very good souls, very good thoughts. Now we are there. How do I proceed? Today I will just address that part. I expect all of you to work on yourselves, because this is a practical exercise. If we assume, hai nahi par aap socho, supposing, I tell you that, say, we have very poor thoughts, yeah, isko bolte weak thoughts hai, yeah, empty hai, we are empty. We may not have negative thoughts, but supposing I say I'm barren, I'm empty, I never did anything with the ground or the soil I had. I could have grown flowers, I could have grown vegetables, I could have grown trees, I could have done anything. But I didn't know, I could never even imagine that this was possible. So imagine your mind to be a ground which needs to be plowed and whatever, you know. Plantation kar sakte uske upar. Correct? But the question is, how do we do it? And this is the main thing. Correct? One is that, of course, you can sow seeds today. Aap beej dal sakte hain. Dalna chahiye. That is the objective of coming here to Rishikesh. That is the objective of so much interaction with you all. That is the objective of this satsang or the discourse that I am giving. That we all must sow very good seeds of thoughts. They may bloom after a century, after a millennium, even after 1 crore years, it's okay. But we must sow some very good thoughts, right? Now, the last thing that I want to say, and keeping it short today, that we face the difficulty when we peep too much inside that I find nothing. That is also all right. We will address that. Now, there are two things which I am going to tell you, which are very important, and do it. One is, like I said, sow some seeds consciously, because whatever we are doing consciously will slowly slip down to your subconscious mind. वो नीचे सरक जाता है, यानी विचार जो repeat होता है, वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, permanent हो जाता है. Correct? That is one. Now, what is the procedure? You all have understood it theoretically, technically. Now, the pertinent question is, how do I do it? So, the topic is, increase the power of your thoughts. The next word is how. So, we'll address how. Okay. The first thing we have to do is calm the mind, because we are most of the time on the surface. There should be allotted some time when we calm ourselves completely. That means good thoughts are bred, यानी कि उसको हम breed कर सकते हैं, उसको हम generate कर सकते हैं, हम उनको जन्म दे सकते हैं, we can, but thoughts, good positive thoughts, regenerative thoughts, they need a medium, substratum जिसको बोलते हैं, soil चाहिए उनको. Thoughts like a chunk of energy, they need a place where they can rest. Like a seed, they need a soil, right? So the mind, our mind is the soil. But what is the environment that we will give? Like a seed will need particular weather, soil, water, climatic conditions. So the best climatic condition for a positive thought is shanti, peace. So calm your mind with meditation. Meditation is the tool. So calm your mind, and a good thought, if it is floating somewhere, or if you have caught on to a good thought, but it is like it's, the seed is in your palm. So take that soil, seed, and embed it in the mind. Yani man mein, shanti mein, un achhe vicharon ka wapas se darshan karo. Think about them. So the environment is of peace. Correct? Without that, and peace of mind has to be repeated many times, and like a newborn baby or a newborn sapling, a new thought can die. It's a very beautiful science that I have got from all the rishis, even Adi Shankaracharya ji, Vishwamitra ji, Amra ji, Swami Shivanand, Karthik Swami, Bhogarnath. I mean, it's a huge collection, it's a huge garden of lovely thoughts, what they have, knowledge that they have given me. And I explicitly remembered Adi Shankaracharya ji a moment back, which will, which is going to come or has come in my books also. And though I wrote that article, that time I didn't grasp it. He was telling me that for me he was saying that when I have a very good thought or when I get a very nice thought, because realization ka matlab ye hota hai, bodh ka matlab hota hai, ki man satata, yani nirantar, man jo hai, nirantar badalta jayega. मन कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, ये इसका एक एट्रीब्यूट भी है. तो जब हम गुरु से मन में दीक्षा लेते हैं, जब हम गुरु किसी को मान लेते हैं, तो हमारा मन निरंतर बदलता रहता है. तो उन्होंने, आदि शंकराचार्य जी ने मुझे ये बताया कि देखो, तुम्हारे मन में मैं देख रहा हूँ इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे, जैसे कहते हैं ना, हम फूल या कोई पौधा लगाते हैं तो जब वो इतना सा ही छोटा सा होता है और उस कोमल पौध में एक छोटी सी कली या फूल, तो अभी नहीं, कली उग रही है, लाइक स्मॉल बड इज देयर, तो उसका फुल 100% पॉसिबिलिटी है कि वो कुचला जाएगा हवा से, जानवर से, जो भी, किसी मीडियम से. तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि तुमने देखा नहीं, अब मेरी आँख से देखो कि तुम्हारे अंदर जब तुम ध्यान करती हो, इतने प्यारे सुंदर कोमल नए संकल्प उठते हैं, पर मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूँ. तो मैंने कहा, किस चीज़ की? तो बोले, जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत दूषित और बहुत ही मन करने वाले, यानी इन्वेजन वाले थॉट्स लोगों के हैं. तो जो तुम्हारा टेंडर छोटा सा सैपलिंग है, यानी पौध है, वो नष्ट हो जाएगी. अब समझ रहे कितनी प्यारी बात बोली उन्होंने मुझे, कि देखो कितने प्यारे प्यारे, जैसे हम कहते हैं पैंजी है, वॉट एवर, छोटा रोज है, ऐसे कुछ भी, कोई भी, एक गुलाब है, एक बहुत ही नाजुक फूल है. तो बोले, देखो तुम्हारे अंदर कितने कोमल विचार हैं, कितना कोमल मन है, पर मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूँ. तो इससे हमने क्या सीखा कि हमें अपने, जिसको नव जीवन बोलते हैं, एक नया जीवन मिला है, एक विचार का भी जीवन है, तो उसको हमको सुरक्षा देनी है, यानी हमको उसको बचाना है. करेक्ट. तो नया विचार, अ न्यू थॉट कैन कम टू यू फ्रॉम समवेयर, यानी आपका अगर मन कनेक्टेड है अपने गुरुओं से, ऋषियों से, तो आपको अपने आप ही वो अच्छा सुंदर विचार आ जाएगा. दैट इज वन वे. फिर एक इससे भी ऊंची अवस्था है जहां हमें कोशिश करनी चाहिए जाने की, और जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, आगे चल के साधना गहरी हो जाती है. सो ये इसके एक्सप्लेनेशन के बाद मैं और नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत अच्छी बात है ये, इसके ऊपर ही ख़त्म होना चाहिए. वो ये है कि पहली बात ये है कि हमको मन की गहराई में उतरना पड़ेगा, तब जाके ये काम होता है. जो मैं ये बात कह रही हूँ, वो जैसे ये नहीं कि थ्री थिंग्स टू डू एंड यू विल अचीव, ऐसा नहीं है. ये थ्री टिप्स हैं, आप ये कर लो, ये पांच चीज़ कर लो, ऐसा नहीं है. ये बहुत प्यारी लंबी यात्रा है. तो इसमें ये कि हमको जो सुख है, जिसको हम परम सुख आनंद कहते हैं, जो ईश्वर का है, परम सुख आनंद बाहर नहीं है, संसार से नहीं मिलता, मिलने की उम्मीद नहीं करना. ईश्वर का परम सुख आनंद, जो कि हमारा ध्येय है, वो हमारे मन में ही मिलता है. यानी हम जो भी प्राप्ति करेंगे वो हमारे मन के अंदर ही होगी. करेक्ट. और जो परम सुख आनंद है वो मन की बहुत गहराई में मिलता है. तो इसका मतलब हमको मन की गहराई के अंदर जाना है, यानी वी हैव टू डाइव डीप. जो जो मैं बोल रही हूँ कि हमारा मन ओशन है, महासागर है, तो हमें बहुत नीचे जाना चाहिए. जाएंगे, साधना का अर्थ ही यही होता है, मकसद यही होता है. तो अब इसको हम टेक्निकली नहीं सीखेंगे कि ये सब कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, इसमें नहीं पढ़ना है, ये समझने के लिए सिर्फ होता है. तो अब ये है कि ध्यान चाहे हम 5 मिनट करें, चाहे हम 25 मिनट करें, प्रैक्टिस से, अभ्यास से हम 1 मिनट के अंदर बहुत गहराई में उतर सकते हैं. तो ये अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है. कुछ लोग कहते हैं नहीं, 1 घंटा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. कोई समय की कुछ नहीं होता है, ये अपनी पावर ऑफ मेडिटेशन है. कई इंस्टेंट कनेक्शन कर सकते हैं. तो इसमें अब मुझसे ये सवाल नहीं करना कोई, या कोई जो बाद में वीडियो देखिएगा कि हमें कितने मिनट से फिर पूछते कितनी देर ध्यान करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. मैं नहीं बता सकती क्योंकि इस तरह मेरी साधना भी नहीं हुई, ना मुझे प्रिस्क्रिप्शन मतलब प्रिस्क्राइब भी नहीं करना है कि आप लोग इतने घंटा करना, ऐसा कुछ नहीं होता है. कोई टाइम का नहीं होता. 5 मिनट का ध्यान भी आपको इतनी ताकत दे सकता है, 20 मिनट का भी दे सकता है. तो जिसके अंदर जितनी ताकत है वो ले लेता है, यानी प्रैक्टिस पे है या अपने पुण्यों पे है या गुरु कृपा पे. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सो ये डिस्कशन में आएगा ही नहीं, इसको छोड़ देते. सो आई वॉज टेलिंग यू के वॉट 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 डू वी हैव टू डू, क्या करना है हमको, मन की गहराई में जाना है. करेक्ट. और मन की गहराई कैसे छू सकते हैं, उसका सिर्फ एक साधन है, वो है ध्यान. सिर्फ ध्यान ही आपको इतनी अंदर तक लेके जाने वाला है. तो अब इसका आपको अभ्यास करना है, आपको हैबिट डालनी है, एक नया रूटीन बनाना है, ये आपको करना है, वो हो जाएगा. करेक्ट. दूसरा, जितना हम मन की गहराई में जाते हैं हमें शांति मिलती है. अगर बहुत उधर शोर नहीं है या बहुत कलेक्शन ऑफ थॉट्स नहीं है, तो क्लियरिंग ऑफ माइंड, यानी जो नया बीज डाला है उसमें जो वीड्स हैं, जो खरपतवार है या पत्थर है, वो तो निकालना ही है. ये मुझे शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक अलग प्रोसेस है. फिर वो बहुत टायरिंग और बोरिंग है और बहुत ही पैसिमिस्टिक हो जाता है कि हम अपने बुरे विचार निकाल दें, हम बुरे विचार निकाल रहे. इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. समझ आ गई है उसको छोड़ दो, उसके ऊपर रोने धोने की ज़रूरत नहीं है. जितना अच्छा आप डालोगे वो अपने आप निकल जाएंगे. तो अपने मन के गहराई में जाएंगे, ध्यान करेंगे. ध्यान में, गहराई में जाकर शांति में बैठेंगे. अगर आपको वहाँ जाके 2 मिनट 5 मिनट भी शांति मिल गई है, उस शांति में जियो. दैट पीस ऑफ माइंड इज दी, जिसको बोलते हैं ना, शून्य. जिसको कई बार हम शून्य बोल सकते हैं, जब बहुत गहरी शांति होती है उसको हम शून्य भी बोलते हैं, समाधि भी बोलते हैं. वो टच कर जाती है, यानी आप साइलेंट हो जाते हो, आपका मन कुछ हरकत नहीं करता है. उस समय कुछ करना नहीं है, केवल केवल, यानी कुंभक जिसको हम बोलते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो कुंभक, कुंभक का मतलब ही यही होता है कि कुछ देर के लिए हमारे विचार, यानी हम विचार विहीन हो जाएं, चाहे वो 5 सेकंड हो, 10 सेकंड हो. ये बहुत लंबा टाइम नहीं होता, ये भी एक मिथ है. लोग बोलते हैं कि हम ना 1 घंटा थॉटलेस हुए, वो डिफीटिंग थॉट है, गलत है. इतना बॉडी हमारा ले ही नहीं सकती, होता ही नहीं है. और वही वाली बात है, डायनेमिक मेडिटेशन करना चाहिए, डायनेमिक थॉट्स होने चाहिए. तो वो थोड़े में भी बहुत है, बिकॉज़ वो पावर पैक्ड है, उसमें पावर ही नहीं है. हम ऐसे लिस्टलेसली मुर्दे से 1 घंटा बैठे और हम कह रहे हैं हमें बहुत अच्छा है, तो वो पलायन है. मेरे हिसाब से वो डायनेमिक मेडिटेशन नहीं होता. कोई नशा करके बैठता है 1 घंटा और बोले थॉट्स नहीं आया, चरस लगा के, ये थोड़ी होता है. तो वो तो बिल्कुल ही एलिमिनेट है, वो ज्योति मार्ग में फिट ही नहीं होता कहीं. बिल्कुल हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, इनसे विचार अच्छे होते हैं। पलायन करने से नहीं होएगा। एस्केप कर लो, ड्यूटीज नहीं करो, ड्यूटीज करनी है, डबल ड्यूटीज करो, सब काम करेंगे। सो शून्य में जाके यानी ध्यान में एक पल भी मिल जाता है जिसमें मन पूरा शांत हो जाता है, इफ़ योर माइंड इज़ वेरी काम एट दैट टाइम, तो उसमें दैट इज़ वॉट आई हैव बीन टेलिंग यू इन द लास्ट 2 डेज की कोई कोशिश मत करो आप, डोंट डू एनी एफर्ट इन दैट मोमेंट, जस्ट बी। ये एक आदत डालो कि हमें कुछ नहीं करना है, यानी इतना हमारा परफेक्ट सरेंडर है भगवान को कि हम ना कुछ बोलें, ना कुछ मांगें, ना कुछ चाहें। वो जो मोमेंट होता है उसमें भगवान ईश्वर स्वयं हमारे अंदर कुछ ना कुछ, बाद में उस समय महसूस भी नहीं होता है या होता है तो उसको ग्रास्प करो। वो शांति के अवस्था में, परम शांति परम सुख की अवस्था में ईश्वर आपके मन में एक अच्छा विचार डालेंगे। वो विचार बहुत पावरफुल होगा। हाउ टू इंक्रीज द पावर ऑफ योर थॉट्स, तो वो पावर हम भगवान के संकल्प से ले सकते, तो वो विचार फिर हमारा हो गया, हमने अडॉप्ट कर लिया उसको। जैसे कल मैंने कहा कि मुझे नहीं पता ये विचार क्यों आया, आता है कोई सामने बड़ा काम मुझे दिया जाता है तो बहुत बार ऐसे मन में आता है ये कैसे होगा, वो बात अलग है, एक ही बार आता है पर ज़रूर आया है, कैसे करूं, या एक लगता है कि कभी किया नहीं कैसे। तो ध्यान में ही मुझे आया कि मैं ऐसा क्यों नहीं बोलती हूँ, ये कैसे नहीं होगा, ये शब्द वही है, ये कैसे होगा, और अगर एक शब्द में और डाल देती हूँ ये कैसे नहीं होगा, इसका मतलब मैंने वो ताकतों को, वो शक्तियों को इन्वोक कर ही लिया है जो ये काम करेंगी। तो इस तरह यानी सोच बदलने से, विचार बदलने से हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है और हमारा जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय होता है, क्योंकि मनुष्य तो अपने ही विचारों से परेशान है। हम लोग बोलते हैं उसने मुझे तंग किया, वो हुआ, ये हुआ, एटीट्यूड की बात है ना। सी द वर्ल्ड में नॉट बी वेरी काइंड टू यू, इट्स ऑल राइट, बट हाउ वी परसीव द वर्ल्ड, हाउ वी परसीव, दैट इज़ वॉट मैटर्स, हाउ वी परसीव मैटर्स ना, बिकॉज द वे वी परसीव वी आर गोइंग टू फील। अगर हमने प्रतीति जिसको बोलते हैं, हमारे साथ क्या भी हुआ वो हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे क्या अनुभव होंगे इस माया में आके, और सबके साथ ये होता है, हर अनुभव सुखद नहीं होगा ये मान के चलना, सुखद तो बहुत कम होते, पर जो अनुभव अच्छे नहीं है उनको हमने किस दृष्टिकोण से देखा वो मैटर करता है, उसी से हमारी लाइफ चेंज होती है। मैं लेना इधर, आई एम टेकिंग यू देयर, मुझे ले जाना उधर है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखें हम, जो मैंने ये बात बोली है तो योगियों की बात है कि एक पल में आपने ईश्वर से संपर्क किया, अच्छी प्रेरणा आई, प्रेरणा में ही शक्ति है, क्योंकि वो भगवान की ही इच्छा है, भगवान का ही संकल्प है, तो उसमें तो मन बहुत शांत चाहिए, उसमें ध्यान आना चाहिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बोला, बट दिस इज़ यही सारांश है बात का, कि जिसको योग यानी जिसको ईश्वर प्यारा है, जिसको अच्छा जीवन बनाना है, उसको ध्यान तो सीखना ही पड़ेगा, उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये तो कोई भी चीज़ जैसे कुछ सीखते हो ये भी सीखेंगे, और अगर ध्यान में देखते हैं या समझ आती है कि भाई हमारे विचार ही बड़े ही कमज़ोर हैं, या इनमें कुछ शक्ति ही नहीं है, हमने ऐसा कभी समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो विचार जागते हैं वही हमें ताकत, सुरक्षा या प्रेरणा देते हैं ना। तो एक तो हमारे ही विचार है, दूसरा है सबसे अच्छा सोर्स ये है कि भगवान से ही, गुरुओं से ही वो जो विचार जो सब जगह हैं सर्वत्र है, उसको ले लो और उसके ऊपर हम चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि भाई प्रैक्टिकल बात यह है कि संसार में मैं ऐसा कहूँगी 10 में से एक अनुभव अच्छा होता है, 9 तो ऐसे ही होते हैं, कुछ इतना कोई ग्रेट होता नहीं है। पर दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा है, तो अगर समझो 10 अनुभव एक रफ एक मतलब एक समझाने की बात है कि कितने अनुभव हुए हमारी लाइफ में, उस अनुभव को हमने कैसे लिया, क्या सीखा और उससे हम आगे बढ़े, इवॉल्व हुए, या हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हम नहीं मानेंगे, या दुख कर रहे हैं ये हो गया हमारे साथ इतना ख़राब हुआ, या हम डर गए हम कभी नहीं ये काम करेंगे। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या उसमें भगवान कह रहे थे, या यानी हमारी सोच के ऊपर, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अच्छी सोच रखने से इंसान पता नहीं क्या से क्या कर सकता है सब कुछ। दैट्स व्हाई जीसस और सब ने यही कहा ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, राइट। तो स्वामी शिवानंद ने भी मुझे यही कहा कि देख मैं बोल रहा हूँ धरती फट जा तो फट जाती है, फर्स्ट लेसन कितना बड़ा दिया। इन अदर वर्ड्स, तू बोल तुझे क्या करना, जस्ट से आई वॉन्ट टू डू इट, हो जाएगा। सो वी हैव टू इंक्रीज द पावर ऑफ अवर थॉट्स आवर सेल्व्स बाई दीज एफर्ट्स दैट आई हैव सेड और बाई दीज थिंग्स टू डू। And we all want to stay blissful, happy, lead a good, full, wholesome life. So this is the best way to do so. So we'll keep it. This is exactly the time that I thought. And if there is any thing that you need to ask or explain, or we could just revise what we have picked up.
माँ, आपने जैसे कहा कि जब मन शांत होता है, थॉट्स अच्छे होते हैं, तो उस समय कुछ एक इच्छा, एक जैसे आपने कहा अच्छा विचार करने की कोई चीज़, कोई इच्छा अंकुर होती है। हम लोग कई समय जब वो इच्छा होती है, वो एक अच्छी थॉट को बस वहीं देखकर अपने अंदर समझकर हाँ अच्छी थॉट है, पर हम उसको इम्प्लीमेंट या उसको इतनी अपनी उसको संकल्प नहीं बनाते, उस इच्छा को हम संकल्प नहीं बना, उसमें देरी कर देते हैं, आई वही रह गई। कई बार सोचा, पर अभी जो आपने कहा उससे ये लगा कि जब भी कभी कोई ऐसा अच्छा थॉट अंकुर होए अंदर, जब आप काम पीसफुल ध्यान, तो उसके ऊपर लगना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए शक्ति मांगनी चाहिए प्रभु से, और उसको एक अपना संकल्प बना के उस पर काम करना चाहिए। इज़ दैट राइट? कई बार चूक जाती, मतलब वहीं का वहीं रह जाता है, पोस्टपोन जैसे आपने कहा कर देते हो, तो इस पे बताइए।
हाँ, इस पे बताते हैं। हमको ये भी जानना चाहिए कि हम लोग वी आर एन एसिमिलेशन बोलते हैं ना, हम एक कॉम्पोजिट बीइंग हैं, यानी हमारे अंदर बहुत कुछ है, यानी विचार तो है पर साथ में कर्म भी बहुत इंट्रिकेटली जुड़ा हुआ है। यानी जैसे माइंड एंड बॉडी एक है, कभी क्या प्रोमिनेंट हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, इम्पैक्ट एक दूसरे पे है। यानी शरीर भी चेतना अगर ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो लगता है शरीर और मन तो एक ही चीज़ है, यानी जो मैं सोचती हूँ वैसा ही ये रिस्पांस दे रहा है, और जो शरीर में होता है वो मन महसूस कर रहा है, तो इसको मैं डेवलप करती हूँ तो मन भी डेवलप होता है, मन डेवलप होता है तो शरीर भी डेवलप होता है। जैसे ये बोला भी, जैसे शीर्षासन है करना है, तो ये संकल्प ही तो आया पहले, पर अगर मैं इसको करूं ही ना, ये यही बात है, टाइम कितना भी लगे। और दूसरी बात ये है, जब तक हम कोई काम यानी कर्म करते नहीं, यानी कोई भी चीज़ करके नहीं देखी, तो वो अधूरा है। क्यों? क्योंकि उसका जो ज्ञान विज्ञान है वो फिर हमें पूरा मिलता ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, भाई आपने फैक्ट्री लगाई पर मशीनें तो चला ही नहीं, वो तो प्रोडक्शन देंगी करेक्ट, पर आपने उसको चलाया ही नहीं। तो ऐसे ही जो भी हमको ईश्वर के ये एक्चुअली लॉज हैं, यानी ये कानून है, ये जो जैसे लॉ ऑफ द लैंड होता है, ऐसे ही भगवान की जो सृष्टि है उसका भी एक लॉ है, यानी बहुत सारे लॉज हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। तो ये जो लॉ ऑफ, जैसे कहते हैं ना फिजिक्स है, लॉ ऑफ दिस, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। तो एक दूसरा भी एक वर्ल्ड है, दूसरा भी एक संसार है, उसके भी लॉज हैं। तो ये योगी ऋषि काम करते हैं, यानी वो उसको ढूंढते हैं कि ये जो जो कुछ भी दिख रहा है ये सब पहले मन में हो चुका तो ये हुआ है। यानी वट एवर हैपन्स हैपन्स इन द मेंटल वर्ल्ड फर्स्ट, देन इट हैपन्स इन द फिजिकल वर्ल्ड। अभी जितने भी क्रिएशन है, पहले कोई सोचता है, कोई चाहता है, फिर उसको मैनिफेस्ट करता है, तो सब पहले कहाँ हुआ? ये मन में ही हुआ, या आइडियाज जिसको हम बोलते हैं, योगियों की भाषा में हम थोड़े अलग शब्द बोलते हैं, दूसरी वर्ल्ड में हम इसको आइडियाज़ बोलते हैं, थॉट्स या आइडियाज़, प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं। पर कभी कोई बोलता है ना, अरे इसको हम नहीं कर सकते, क्या करके देखो ना, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, बड़े बड़े प्रोग्रेसिव चीज़ें जो हुई हैं, यू नो, वो सब कैसे, बस ये करके देखते हैं, होता है वो, करेक्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि सिर्फ अच्छा विचार आना और उसको नहीं करना, तो वो याद रखना, वो जो आपने अच्छा सोचा, यानी एक एनर्जी अपने अंदर जनरेट किया है, विचार मतलब एनर्जी ही होती है, राइट? तो वो हमने उसको, अब जैसे ये मैच स्टिक है, अब आपने इसको इग्नाइट ही नहीं किया है तो क्या होगी? धीरे धीरे ख़त्म, फिनिश, और उसका पर्पस ही नहीं है मैन्युफैक्चर करने का या बनाने का। तो ये जो पूरा विश्व है, यानी पूरा ब्रह्मांड है, एक्चुअली विश्व भी नहीं है, मेरे से बोल, मैं मतलब आई कांट बट से, मैं रोक नहीं पाती हूँ। ये कश्यप महर्षि बहुत सुंदर बताते हैं मुझे, बहुत सुंदर, मतलब ये तो वहां तक पहुंच गए कि जब ब्रह्मांड ही नहीं था तब क्या था, ईश्वर के अंदर कैसे संकल्प थे, भगवान को क्या मन में आई, भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, यानी जो कुछ भी आज बना है उसका आधार संकल्प ही है। हम जो बात कर रहे हैं अभी, मनुष्य के संकल्पों की बात कर रहे हैं, पर इन सब का आधार, यानी जो पूरा ब्रह्मांड है उसका आधार परमात्मा का संकल्प है। तो जितना कुछ भी आज आप देख रहे हो बना है, वो पहले किसी के मन में आया है, ये मैनिफेस्टेशन है। तो मैनिफेस्टेशन भी अच्छा है, अब वो नेगेटिवली हमने पैदा किया, यानी जो चीज़ें हम कहते हैं अच्छी नहीं है, और अगर हमने डिसाइड किया है कि हम सिर्फ अच्छी चीज़ें जनरेट करेंगे, जिससे मुझे सुख मिले, मेरे परिवार को मिले, मेरे समाज को मिले, मेरी कम्युनिटी को मिले, पूरे वर्ल्ड को मिले, तो वो फिर मुझे करना चाहिए। ये मैं एक बार कहना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि जब हम करते हैं तो उससे जो सुख की उत्पत्ति होती है वो बहुत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये फिर निष्काम कर्म में आता है। अगर मेरे अंदर ये आता है कि मैं अपने आप को बहुत सुखी बनाना चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए, जो तभी इच्छाओं को बुरा कहते हैं, अच्छी इच्छाओं को बुरा नहीं कहते। यानी आप कह रहे हो मेरे अंदर ये इच्छा है, मैं करूँ, मैं कह रही हूँ करो। एक इच्छा ये होती है कि मैं कहूँ कि ये उसके पास है, मुझे भी चाहिए, ऐसे भी कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, तो वो दुख का कारण है, क्योंकि उसकी प्राप्ति हो कि ना हो मिले ना मिले, या मिल जाएगी तो उस समय आपकी मन की अवस्था क्या है, आपने सुखी नहीं होगा। यही लोगों के साथ होता है, होर्डिंग 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 करके भर भर के लॉकर शॉकर सब भर भर के रखते हैं, सिर्फ जोड़ने का शौक है या एक अपना ईगो फीड करने का है, तो वो तो बहुत शैलो थिंकिंग है ना, राइट। जो 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 विस्तार पूर्वक हम ये, जैसे अभी ये मन मेरा खुल गया है कि भाई आओ, कोई भी है जिसको कुछ सीखना जानना है, मेरे से कुछ चीज़ चाहिए, भाई आप कहते हो आपके पास ज्ञान है या आपने कुछ प्राप्ति की है, मुझे दीजिए, आप आए हो, तो मैंने खुल के दिया। पर मैं अगर ये चीज़ अपने पास ही रखूँ, दूँ ही ना किसी को, और मैं कहूँ नहीं मैंने सबके लिए संकल्प किया, सब मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, करके देना पड़ता है। वही वाली बात है, मशीनें ला दी आपने, प्रोडक्शन नहीं किया। और जितना हम सोल में एलिवेट होते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर दिस, उतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, आराम नहीं होता इसमें। आप किसी भी ग्रेट बीइंग की, एनलाइटन्ड बीइंग की लाइफ देखो, वो आखिरी सांस तक काम ही करते गए, देते ही गए वो लोग, कि उनमें कैपेसिटी है देने की। वो जो मैंने कहा 2 मिनट का ध्यान भी बहुत अच्छा है भाई, 2 घंटा नहीं कहना, फालतू बात है ये जो अब तो लोग अच्छा है मुझे पूछते भी नहीं कि ये क्या है, तुमने कहाँ से सीख के आए हो कि 2 घंटा सुबह बैठो 1 घंटा शाम को बैठो, क्या होगा, लाइफ तो सारी रुक जाएगी आपकी। किसके पास इतना टाइम है कि हम कहें हम 3-3 घंटा देंगे, तो बाकी का काम कौन करेगा भाई। तो हम कम टाइम में ज़्यादा काम क्यों नहीं कर सकते, वो एफिशिएंसी क्यों नहीं है। सो आई ऑलवेज टेल सम पीपल द सेम थिंग, यंगस्टर्स, कि तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस बहुत है पर एफिशिएंसी नहीं है, तो सिर्फ इंटेलिजेंस का मेरे क्या काम का है, जब आप काम नहीं करके दिखा सकते मेरे को, यू आर नॉट एफिशिएंट। प्रोफिशिएंसी तो बहुत दूर की बात है, यानी स्किल भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए, हार्डवर्क भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए कुछ बनने के लिए। अगर आप कहें कि जैसे मैं ही कहूँ नहीं, मैं तो समाधि में बैठी हूँ, मुझे तो बहुत आनंद है, मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं होता है। तो बेधड़क बिना सोचे अच्छा संकल्प आता है, कहीं से भी आया उससे कोई मतलब नहीं है, है अच्छा ज़रूर करो। जैसे मैं बोलती हूँ, मैंने कल आपको शॉर्ट में बताया कि कितने छोटे से शुरू किया और लग रहा था ये मैं अपने लिए ही कर रही हूँ कुछ, पर इतना बड़ा हो गया ये, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा है। इट्स नॉट द नंबर ऑफ पीपल, इट इज़ द इंटेंसिटी, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट आई डू, वो दैट मैटर्स। अगर वही है कि मैं 200 लोगों को बिठा दूँ और किसी ने कुछ सीखा नहीं और किसी का मन नहीं लगा और किसी का कुछ काम भी नहीं बना, पर मेरी पॉपुलैरिटी बहुत हो गई, वो तो फिर डिफीटेड पर्पस है। और कुछ?
माय, आई हैव अ स्लाइट कंफ्यूजन रिगार्डिंग संकल्प एंड इच्छा, क्योंकि अगर हम संकल्प को थॉट बोलते हैं, सो इच्छा भी तो थॉट ही होता है। जैसे अब अगर एग्जांपल ले, जैसे शिवानंद जी वाला एग्जांपल, कि उन्होंने बोला धरती फटो और फट जाती है, तो ये उनकी इच्छा भी तो है ना, वहाँ पे वो इच्छा नहीं।
आगे बोलो।
यही कि मतलब थॉट्स तो, अब जैसे मैं कोई कोई मेमोरी है वो भी थॉट ही है ना, या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं वो भी थॉट ही है। तो अगर हम थॉट्स को संकल्प कह रहे हैं, तो मेमोरीज भी संकल्प ही हो, मतलब एक तरह से उसको भी संकल्प ही कह सकते हैं। इट इज जस्ट टर्म टर्मिनोलॉजी वाली प्रॉब्लम है यार,
मुझे भी बहुत
जी। जैसे यहाँ हमारे यहाँ बोलते थे ना कि मैं संकल्प लेता हूँ, पर वो दैट साउंड्स कि मैं डिसाइड करता हूँ या रिजॉल्व लेता हूँ।
रिजॉल्व भी होता है, आपको कई बार बोला जाता है पूजा में भी कुछ
जी
जी, बट रिजॉल्व होता है
जी। बट इफ, बट वही मतलब इफ संकल्प को हम थॉट बोल रहे हैं, तो रिजॉल्व तो ज्यादा मुझे इच्छा जैसा लगता है, तो ये बस टर्मिनोलॉजी की कन्फ्यूजन है थोड़ी सी।
मैं बताती हूँ, देखो, नहीं तो फिर और सवाल करना। हम इनको अलग अलग तरह से समझते हैं। देखो, इच्छा बहुत बहुत इनलाइटेंड बींग्स ने हमें कहा अच्छी नहीं है। आदि शंकराचार्य जी तो बिल्कुल ही बोलेंगे आपको कि इच्छा तुम्हारी तुम्हारा अज्ञान है, मत करो। तो पर जो हमें समझ नहीं आता वो क्या कहते हैं, वो दूसरी इच्छा करने को, मतलब देत से दूसरी इच्छा करो, खुद को जानो। तो वो काउंटर जो बात कहते हैं वो हमें समझ नहीं आती, पर जब वो इच्छा कहते हैं तो सबसे पहले समझ लेना, अगली बार कोई भी चीज़ समझनी हो ना तो किसी भी डिवाइन पर्सनालिटी की लाइफ, उनकी बातें याद रख के, यानी उनको बीच में रख के समझना। अगर वर्ड्स देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स, ये वो, उसमें कुछ समझ नहीं आती है। इच्छा वो इसलिए कहते हैं मत करो, तो वो पूरी की पूरी जो बात कहते हैं ना वो हमें नहीं समझ आती है। वो भौतिक इच्छा की बात करते हैं। यानी क्या होता है, पहले हम सब ब्रह्म अवस्था में होते हैं, फिर हम जीवात्मा बन जाते हैं, राइट। जब जीवात्मा बन जाते हैं तो धीरे धीरे जो हमारी भगवान की स्मृति है वो भूलती जाती है, और फिर जैसे भूल भुलैया है, हम इधर आ गए, खिलौने मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही हैं, और इस तरह हमारा मन भी फॉर्म होने लगता है। फिर हमें जो चीज़ हमारी ज़रूरत होती है वो तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, पर फिर क्या होता है, फिर प्राप्ति की इच्छा हो जाती है। यानी इतनी लुभावनी चीज़ें संसार में है, तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अब जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी ज़रूरत इतनी है पर मैं मांगता उतना हूँ, ज़रूरत इस चीज़ की है, मैं एडिशनल इतनी चीज़ें मांगती हूँ, तो वो रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब क्यों है, उसके आगे की बात लोगों को नहीं समझ आती है। जो वो कहते हैं कि फिर ये चक्र चलने वाला है, तुम जन्म जन्म तक भटकने वाले हो, ऐसे कहते हो, क्या है उसका मतलब, क्या है? क्या होता है कि जो चीज़ हम बहुत रिपीट करते रहते हैं तो वो हार्ड हो जाती है। यानी उसकी जो डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा परमानेंट हो जाती है, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल, लोगों को लैंड की बहुत ज़्यादा ग्रीड है, लैंड और अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस ट्राइब्स, कम्युनिटीज, रेसेस, लैंड। और इतनी ख़राब है ना ये, मैं कैसे बताऊँ आपको, कि जन्म जन्मांतर तक चलती है। अब ये डिग्रेड होने होती है। एक है कि भाई मेरे को कल्टीवेशन चाहिए, पहले हम सबको ज़मीन की ज़रूरत थी क्योंकि हम अपना खाना खुद उगा रहे थे, हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं साधन कि हम जाके खरीद के लेके आए। एवरी वन हैड टू मेक देयर क्लॉथ, एवरी वन हैड टू मेक देयर फूड ग्रो, मतलब अपने लिए जितना चाहिए तो हम ग्रो करते थे उसके लिए। तो लैंड चाहिए टू कीप कैटल, चाहिए कम पड़ता है, फिर क्या होता है, ये चीज़ें फैलती हैं। एंड आई नीड मोर लैंड नाउ, मेरे पास कैटल मल्टीप्लाई हो गया, एंड सो ऑन। तो ये ज़रूरत जो है, अब प्रॉब्लम क्या आती है, इसके बाद एक और स्टेप आता है, मन करप्ट हो जाता है। फिर जो एक कहानी है, जो बुक्स में भी है, बाइबल में भी है, एबल एंड केन की है, ऐसे कई सारी स्टोरीज़ भी हैं कि कैसे मन में एक सिन या एक पाप आया, यानी ग्रीड आई। पाप कैसे होता है, इन इन विषयों से हो जाता है, और अज्ञान और हमारा गहरा होता जाता है। तो स्वामी जी जो कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी जो कहते हैं ये इच्छा अच्छी नहीं है, उसके अलावा वो क्या कहते हैं, लोग उसको कनेक्ट नहीं कर रहे। वो ये भी कहते हैं कि देखो तुम्हें डिल्यूजन हो रहा है, तुम मृग तृष्णा में हो, मत जाना, उधर सुख नहीं है या चांदी नहीं है, वो धूप है, यानी मिराज है ये। यानी अब उसको हम इसको अब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लगाएं। इंसान भ्रमित हो जाता है, गलत चीज़ सही लगती है, सही गलत लगने लगती है। अब जैसे मैं कहती हूँ मेरे घर में 8 लोग हैं, ठीक है, मुझे इतनी ज़मीन चाहिए, इससे मैं मेरा और मेरा जानवर भी जैसे खड़ा हो जाएगा, रह लेगा, शेड्स बन, काउ शेड्स बन जाएंगे, जो भी, उसके अलावा शायद थोड़ी और भी है मेरे पास, नो दैट इज़ इनफ। प्रॉब्लम अज्ञान क्या है, भ्रमित मैं कहाँ हो रहा हूँ, इसके घर में तो 5 लोग हैं और इसके पास ज़मीन ज़्यादा है, तो वो कंपटीशन शुरू हो जाता है। पर यहाँ हम विवेक नहीं लगाते। तो आदि शंकराचार्य जी क्या कहते, विवेक जगाओ, भ्रमित मत हो, इच्छाएं मत करो। आगे की बात नहीं हम समझ रहे कि जो दुख मिलने वाला है भाई वो तेरा है, तू भोगने वाला है। क्योंकि विवेक न होने से, विजडम न होने से हम ये एक्शंस को रिपीटेडली कर रहे हैं। एक जन्म नहीं, दूसरा जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 50 जन्म नहीं, 100 जन्म तक हम यही कर रहे हैं। तो वो जो एक विचार या संकल्प आया वो धीरे रिपीट करते धीरे धीरे वो इच्छा बन जाती है। इच्छा फिर वासना कब बनी हमें नहीं पता है। तो जो बहुत ऑफ्ट रिपीटेड या परमानेंटली जिसको हमने बिठाई लिया है वो हमें नहीं छोड़ती है, बिलीव मी। नहीं तो इतने इन्वेजन्स और इतनी क्रूरल्टी वर्ल्ड में नहीं होती। जो हम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं वो कहाँ से इरप्ट होती हैं, ये ऋषिज एड्रेस कर पा रहे हैं कि देखो तुम्हारी वासनाएं हैं। तुम्हें कितना भी बड़ा कंट्री मिलता है तुम्हें छोटा ही लगता है, तुमको ज़रूरत नहीं, तुम्हारी पॉपुलेशन ही नहीं है, फिर भी वो सरहदें और दे बढ़ा लेते, दूसरे कंट्रीज़ में घुस जाते, पावर चाहिए। सो इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुमको पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट दिस वर्ल्ड टू बी पीसफुल, इट विल स्टार्ट फ्रॉम यू, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम यू। वो बात अलग है पॉलिटिशियंस या बड़े ब्यूरोक्रेट्स इस चीज़ को नहीं, बिकॉज फिर पॉलिटिक्स अलग ही राह होती है, उनको हम कुछ कह नहीं सकते, सर्वाइवल वाली बात हो जाती है। कई बार इनके अपने ही पर्सनल एजेंडे इतने होते हैं। पर एज ह्यूमन बींग्स, एज ऑर्डिनरी पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड, हम ये जानते हैं कि हमें ये नहीं करना है। द मैटर एंड्स देयर। क्यों? लाइफ स्पैन ही कम है मनुष्य की, और उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, जानवर है समझो 10 साल जिएगा, 12 साल जिएगा, 5 साल, जो भी इनका एक लाइफ होता है, बहुत हुआ तो कोई यू नो 30-40 जी लेगा, एक्सेप्ट फॉर से टॉर्टोइज़ और समवन, बहुत कम लाइफ है जानवर की। तो ह्यूमंस की लाइफ तो जितनी है सो है, पर द प्रॉब्लम इज़ हमको ये भी नहीं पता है हम कितने साल जिएंगे। यानी डेथ इज़ सो नंबर वन सर्टन, दूसरा अनसर्टन, कब होएगी हमें नहीं पता। तो ये जो फिलॉसफी या ये एंगल है देखने का वो बहुत अलग होता है ऋषि या ज्ञानियों का, लेट्स से नॉट ओनली ऋषि, बहुत ज्ञानी भी होते हैं। तो वो ये सब चीज़ को कंसिडर करते हैं कि हमारी नीड्स कितनी होनी चाहिए, या हम कितना एक्सपेंशन करें, हमारे पास वक्त कितना होगा, क्या मेरी हेल्थ अलाउ करेगी। तो जब वो समझदारी से विवेकपूर्ण अपना जीवन जीते हैं तो वो अपने लिए भी सुख देते हैं, मतलब होते हैं सुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुख नहीं देते हैं। तो इसलिए ये सारी बात देख के कि फिर क्या होगा, बहुत लोग ऐसे हो जाएंगे तो वर्ल्ड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहती है, कम्युनिटीज़ रेसेस में बहुत झगड़ा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम अपना जीवन, अपना समाज का, सबको अच्छा रखना है तो सब चीज़ संयम में रखो, अच्छे से रखो, डिज़ायर्स उस तरह से मत करो, परंतु दूसरी इच्छा ज़रूर करना। जैसे अपने लिए नोबल लाइफ बनाओ, आई मीन आइडियल लाइव्स हैं ये, बट लोगों को इससे वो नहीं होता। तो दूसरी बात उनको ये भी समझ आती है कि हमारे प्रारब्ध से जो हमें मिलता है बहुत अच्छा है, बहुत है वो, पर लोग भाग्य को नहीं मानना चाहते, संतोष को नहीं मानते, संतुष्टि की बात करना ही नहीं चाहते, तो इसीलिए वो दुखी हैं। और इसीलिए उनका जन्म मरण का, और बहुत बुरे, लाइक बुरे माने लो क्वालिटी ऑफ लाइव्स फेस करते हैं वो बाद में। नहीं तो इतनी पॉवर्टी क्यों है दुनिया में, क्यों हम लोग इतना वर्ल्ड में, कई बार वी ट्राई बट होता नहीं है ना, कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट्स पॉवर्टी में है। सो देर आर, आई मीन दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज। सो डिज़ायर्स इसलिए मना करते हैं। रही संकल्प की बात, क्योंकि ये हमारे लिए नया वर्ड है और हम लोग एक्चुअल में इसको कभी जाने भी नहीं, तो संकल्प शक्ति जो ये बोलते हैं इसमें एक्चुअली मेनली विचार है, जो आज मैंने बताया विचार शक्ति से होता है। और वो संकल्प क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान से बहुत रिलेट करते हैं। पहला फर्स्ट थॉट या फर्स्ट संकल्प भगवान का था कि मैं सृष्टि की रचना करूँ. सो दे आर स्टिल देयर, दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, वर्ड कॉल्ड संकल्प, राइट. और इसमें रिजॉल्व डिटर्मिनेशन भी यूज होता है, यानी आई डिटरमाइन टूडे मेरे को आज ये करना है, आज मैंने ये संकल्प ले लिया. और जो विचार हैं कई बार वो विचारों को संकल्प ही कहते हैं. सो धीरे धीरे आपको समझ आएगा. एंड देन आई डोंट थिंक सो आप ज़्यादा इसमें घुसना चाहोगे. आप कहोगे जो भी है इट्स वर्किंग ऑन मी, आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम. फिर इस पर थोड़ा सा आगे वो और भी बताते हैं कि हमारे अंदर तीन अननोन, यानी जिसको हमको आइडिया ही नहीं था, तीन शक्तियाँ होती हैं. इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, क्रिया शक्ति. तो ये संकल्प भी, जो आपने इच्छा भी डाल दी, ये एक्चुअली अलग हो जाता है. इच्छा माने इनिशिएशन पावर. यहाँ पे जो इच्छा शक्ति बोलते हैं ना, या विल पावर, काफ़ी ओवरलैपिंग है इसमें. तो इच्छा शक्ति जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आपका इनिशिएशन या इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है. कितना भी अच्छा सब, वही वाली बात है कि भी बारिश हो रही है, आप जाके बालकनी में खड़े हो जाते हो छतरी लेके, तो उसमें किसकी गलती है? आप भीग नहीं रहे हो क्योंकि आपने छतरी सर पे खोल के रखे हो. बारिश तो सबके लिए हो रही है, तो आप भगवान की कृपा तो सब पे है, भगवान का अच्छा संकल्प तो है ही. भगवान ने हमारे लिए क्या हार्मफुल चीज़ बोली, तो हम वो ग्रहण नहीं करते क्योंकि मन में इच्छा ही नहीं जगाई. तो इच्छा हैज़ टू बी यूज इन द रियल टर्म्स एंड प्रॉपरली, यू नो, कि हाँ मेरी इच्छा है. जैसे मैं बोलती हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे इसलिए जी हूँ क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था, बट मुझे कुछ और चाहिए था जिसमें मॉनेटरी या मनी से कुछ रिलेशन नहीं है. और मैंने रिसोर्सेज अपने अंदर से ही निकाले, मैंने बाहर के कभी भी, क्योंकि वो ना पॉसिबिलिटी थी ना मुझे करना था. आई डिडंट वांट टू डिपेंड ऑन मनी, क्योंकि ये बाहर के साधन, जैसे मैं कहूँ मुझे ऐसा कमरा दो तब मैं ध्यान करूँ, तो भाई ऐसा कमरा कहाँ मिलेगा? मुझे ऐसा मंदिर ही देना, मेरे जब मेरे ध्यान हो तो कोई घर में एक शब्द नहीं बोलेगा, ऐसा थोड़ी होता है. मतलब आप चैलेंज तो सारा वही है कि अगर आप जैसे इन एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेज हैं उसमें आपने परफॉर्म किया है कि नहीं. एंड सबसे अच्छा जो मुझे उदाहरण हमेशा लगा है कि जो ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं वो कितने प्रेशर में रनर्स होते हैं. ऐसे 100 मीटर्स ही भाग रहे हैं वो, पर वो 10, 15, क्या 20 साल देते हैं वो 10 मिनट भी नहीं, मतलब 2 मिनट 3 मिनट कितना है आजकल, तो बहुत ही कम टाइम में ये लोग भाग रहे हैं. वो एक परफॉर्मेंस के लिए पूरी लाइफ, पूरी यूथ दे देते हैं. तो जब वो भागते हैं तो मैं हमेशा सोचती थी क्या ये कभी कहते हैं मुझे मत देखना, मुझे सब मत देखो, मुझे कॉन्शियस हो रहा है, या मैं ऐसे, तुम शोर करते हो, तुम हूट करते हो, तुम विसल करते हो, तुम चीयर करो मुझे. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो कहने का मतलब है उनके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स अपनी ही होती है. एंड सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे को स्विमर्स का लगता है कि वो लोग इतने ज़्यादा पानी के अंदर होते हैं कि अगर वो ऐसे भी करें तो उनका फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कम हो जाएगा तो वो सेकेंड आ जाएगा. आजकल तो इतना गजब का कंपटीशन वर्ल्ड वाइड है कि डोंट इवन लुक बैक, तूने अगर एक तो वो फ्रैक्शन के फ्रैक्शन को देख रहे हैं आजकल, बिकॉज इतना अच्छा परफॉर्मेंस सबका है वर्ल्ड वाइड. तो बाहर के क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करना होता. ये सब अपने अंदर की चीज़ है, अंदर से ही होता है, मिलेगा भी अंदर, रियलाइजेशन भी अंदर है, किसी को अब कुछ बताना भी नहीं. जैसे सारी दुनिया जी रही है वैसे ही रहो, सबके साथ घुलो मिलो, सबको क्या बोलना है कि देखा हमने आज ये डिस्कस किया, फिर अब हमने ना ऐसा उतना अच्छा आंसर दिया, उन्होंने ऐसा बोला, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत है, राइट. और
जय सतगुरु माँ, कल आपने हमको लाइफ फोर्स के बारे में बताया था, तो जब हम बॉम्बे से आ रहे थे प्लेन में, मैं आपके साथ पीछे बैठी थी, तो जस्ट अ लिटिल रियलाइजेशन केम ओवर मी दैट एयर में जो लाइफ फोर्स है, हमारी कॉन्शियसनेस जो जिस लेवल पे होती है उसके हिसाब से हम एयर में से वो लाइफ फोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. यानी कि हमारी आत्म अवस्था जैसी है वैसी एयर से हम लाइफ फोर्स ले सकते हैं. सो आई वांटेड टू कंफर्म कि ये करेक्ट बात है क्या.
फिर से एक बार सबके लिए रिपीट करो.
जैसे हवा सब जगह है, हम सब सेम एयर ब्रीद कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है या जिसका कॉन्शियसनेस थोड़ी बढ़ जाती है वो अपनी कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से हवा से वो प्राण शक्ति ले सकता है. क्या ये बात सच है?
हाँ हाँ बिल्कुल. क्योंकि एक वही वाली बात है कि एक तो प्राण है जो पूरे ब्रह्मांड में है, राइट? जैसे कल मैंने बताया, परसों बताया आपको कि एक हम फर्क क्या है पंच महाभूत और पंच तत्वों में. क्या फर्क है? पंच महाभूत तो जो पूरे ब्रह्मांड में है, पर जब वो एक घट में यानी एक शरीर में आ जाता है, एक ऑब्जेक्ट में आ जाता है, तो वो तत्व बन जाता है. क्योंकि वो महाभूत नहीं हो सकता, वो एक अंश है उसका, राइट? इसी तरह जो प्राण है वो सब जगह व्याप्त है, सब जगह प्राण व्याप्त है, ठीक है? और प्राण का के भी नेचुरल लॉज हैं. जो आपने कहा कि भाई क्या ये हमारी चेतना पे निर्भर करता है, है तो प्राण वो ही ना, अभी कोई वही है कि क्या कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, राइट? ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी चेतना पे निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का प्राण उठाएं उस समय, क्योंकि वही प्राण हमारे विचार में भी है ना. तो जो प्राण है जो हमारे अंदर, ये बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है. क्योंकि इसीलिए मैं वो कह रहा ना, आज भी स्वामी जी के 100 बार मैं चरण स्पर्श करूं या नतमस्तक होती हूं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म बातें होती हैं, किसी को पता भी नहीं है क्या उसमें पीछे लॉ क्या है. कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, ऐसे लॉज हैं. प्राण का लॉ ये है कि ये पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो करता है. जैसे वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स नॉट अपवर्ड्स. तो जो प्राण है, राइट, वो पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है. यानी आपके पास ज़्यादा प्राण होगा. एक है कि मैं फूड से डिराइव कर रही हूँ, करेक्ट, एक्सरसाइज या प्राणायाम या किसी से टेक्निक से मैं डिराइव कर रही हूँ, करेक्ट. एक मैं अपने विचारों से अपने प्राण को इंक्रीज कर रही हूँ. मैंने अच्छे विचार रखे, मेरे को ताकत मिली, आई हैव मल्टीप्लाइड, मेरा एम्प्लीफाई भी हो सकता है उससे, राइट, वो भी हो गया मेरा. पर एक और चीज़ है इसमें, प्राण में दो चीज़ होती है. एक है इट इज़ अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव थॉट्स, एंड द अदर इज़ इट इज़ रन और इट इज़ गवर्न्ड बाय द विल ऑफ गॉड. यानी ईश्वर की ही मर्जी होती है. यानी भगवान ने प्राण के अंदर, यानी व्हाट इज प्राण, ऑक्सीजन प्लस विल ऑफ गॉड. कि सिर्फ वो ऑक्सीजन नहीं है, नहीं तो फिर वो डेथ पे इन्हेलेशन ले लेगा एक्सहेलेशन के बाद. पर डेथ क्यों हो गई? क्योंकि एक्सहेलेशन हो गया, इन्हेलेशन नहीं हुआ. तो वो जो इन्हेलेशन था, वो जो सांस अंदर तुम्हारे नॉस्ट्रल्स में आएगी कि नहीं आएगी, ये भगवान की मर्जी पे है ना. तो इसका मतलब लॉ क्या है कि जो प्राण है वो भगवान की मर्जी से चलता है. इसका अच्छा सबसे तरीका है भगवान की इच्छा पे चलो, तो तुम हमेशा ही पावर पैक्ड रहोगे. भगवान तुम्हें कुछ ना कुछ तो, यानी खाना नहीं मिला, थकान है, तो भी तुम रिचार्ज हो जाओगे. तुमको सिर्फ भगवान का स्मरण करना है और प्राण अपने आप कहीं से भी आ जाएगा. इसमें मैंने जो अनुभव किया, मुझे अच्छा हुआ आपने बात की, तो मैंने कुछ राइट अप्स किए हैं, लिखे हैं, मुझे वो आज अभी समझ आई उसकी, यानी ये 10-11 साल पहले की बात है। मेरे ब्लॉग में मैंने इसके एनेक्डोट्स लिखे हुए हैं कि जब मैं लिखती थी तो मतलब जितनी आज मेरी क्षमता है प्राण की उतनी नहीं थी तब, राइट। तो बहुत बार जब मैं ध्यान करती थी तो मुझे कहीं दूर दराज, सम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर, बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ दिखते थे, जो कि जिसमें ऋषियों की आत्मा है। तो तब मुझे इतनी बात समझ नहीं, कैच नहीं होती थी, तो वो मुझे प्राण भेजते थे, फॉरेस्ट्स मेरे को प्राण भेजते थे। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मेरे को ना बहुत सारे पेड़ लगाने पृथ्वी पे, तो ये इसलिए मेरे साथ ऐसा करते हैं। अब ऑफ कोर्स आई अंडरस्टूड, पर पब्लिकली मैं पहली बार बता रही हूँ ये। मुझे अब ये समझ, यानी आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स के ये मुझे प्राण देते थे, क्योंकि नॉनस्टॉप बार बार काम करना, और वो भी सूक्ष्म प्राण, एक स्थूल प्राण है जो हमको फूड से मिलता है, करेक्ट, और एक है विचारों से जैसे मिलता है। तो ये सूक्ष्म में आ जाता है कि जो हमारे विचार हैं या दूसरों के विचार हैं, राइट, सबसे तो बात करके ऐसे एनर्जाइज नहीं लगता है ना, नोट करो अपने आप को, अपनी ऑरा ही बढ़ जाती है और किसी से डिप्लीट होती है। तो वो एक्सचेंज क्या हुआ है, वो प्राण ही एक्सचेंज हुआ है। तो उसने आप, वो वीक है तो वो खींच लेगा आपका, प्राण खींच लेता तो आप कमज़ोर होते हो। तो ये चेतना पे डेफिनेटली होता है। और नॉट ओनली दैट, मुझे बहुत बार ऑब्जेक्ट्स भी, यानी ऑब्जेक्ट्स में भी प्राण होते हैं पर बहुत कम होते हैं। और जो एस्ट्रल वर्ल्ड के या दूसरे वर्ल्ड के लोक के बीइंग्स होते हैं, पितृ होते हैं, ये सब हमें अपनी ताकत या ऊर्जा या प्राण भी देते हैं। अगर हम इतना पूरा वर्ल्ड के लिए काम करते तो देते। सो स्पेशली अगर हम फ्लाई करते हैं, यानी 35,000 किलोमीटर्स ऊपर पृथ्वी से चले जाते हैं प्लेन में, जब हम एयरक्राफ्ट में होते तब तो बहुत ईजी है डिवाइन बींग से कनेक्ट करना, बट लोगों की सोच पे निर्भर करता है कि हमारी कितनी पावर है टू कनेक्ट विद द डिवाइन वर्ल्ड। सो डिड आई रिप्लाई, पूरा हुआ? हाँ। पूछा पहले? हाँ पूछा।
माँ, वन थिंग इज इंट्रीगिंग मी। जैसे जो ऋषि मुनि, आपने जितने भी हमारे ज्योति मार्ग के ऋषिज हैं, महारिषिज हैं, वो करोड़ों वर्षों से इस पृथ्वी पे उन्होंने जन्म लिया और अपना सेल्फ रियलाइजेशन का गोल,
वन
करोड़ प्लस से, एंड दे हैव अचीव्ड सेल्फ रियलाइजेशन टू ग्रेट हाइट्स। सो वन क्वेश्चन वॉज अराइजिंग इन माई माइंड दैट ये जो अर्थ है, 13th बार जो बनी है पृथ्वी, इस 13th अर्थ में इतनी कुछ एक स्पेशल चीज़ है कि ये जो पूरे 13 ऋषिज हैं, राइट फ्रॉम विश्वामित्र जी टू गुरु गोरखनाथ जी, वो सारे इस 13th अर्थ पे फिर से आए हैं। मतलब इवन दो दे मस्ट हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन करोड़ प्लस ईयर्स, बट ऑन द 13th अर्थ ऑल द 13 ऋषिज हैव कम इंक्लूडिंग यू। एंड ऑल दो यू हैव टोल्ड अस कि ये विशेष कलयुग है या मैक्सिमम प्रोग्रेस और डिक्लाइन भी इसी 13th अर्थ में ही हुआ है, बट और भी कुछ तो होगा कि सारे ऋषि ने इस 13th अर्थ को ब्लेस किया या उनके कदम पड़े इस पे। तो आई मीन, व्हाई इज दिस 13th अर्थ सो स्पेशल, या व्हाट प्लान्स डज गॉड हैव कि उन्होंने इतना कुछ अलाउ किया ऑन दिस पर्टिकुलर अर्थ, आई मीन इन दिस टाइम?
मैक्सिमम इच्छा पूरी करने के लिए, मैक्सिमम लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए ये टाइम है। मतलब हरिडली जिसको बोलते हैं, यानी समझो कोई प्लांट लाइफ में था, एनिमल लाइफ में था, कोई कैट था, डॉग था, वो भी आज ह्यूमन बीइंग बन के आ गया है, क्योंकि उसका तो इतना भटकन था, वो एनिमल बना फिर ये किया, अगर वो आज फिर से ह्यूमन बीइंग बन गया है तो भी, और अगर ह्यूमन बीइंग भी है, मनुष्य भी है, तो जो अभी बात ही की इसकी इच्छा फिर वासना बनती है, तो मैक्सिमम इच्छाएं तुम पूरी कर लो, क्योंकि अगर बाद में भी ये इच्छाएं पूरी होती रहेंगी तो कभी भी जो पृथ्वी है वो दोबारा अपने इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती है, क्योंकि हमने इच्छा पूर्ति कर ली है या अपने पॉसिबल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सो मच प्रोग्रेस दैट ह्यूमंस हैव मेड, यही तो सारा प्रॉब्लम हो गया है कि जो भी भगवान चाहते थे उसका ऑपोजिट हो रहा है, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था कि तुम लोग कंफर्टेबली रह लो, बहुत मुश्किल रहता है ऐसे भी वेदर क्लाइमेट के, तो चलो पानी गर्म चाहिए, हीट चाहिए, या तुम्हें लोकोमोटिव्स चाहिए तो कर लो, पर उसका एक बहुत ख़राब रूप भी आया, वो चाहे इंटरनेट है उसका भी बहुत ख़राब रूप आया, बिकॉज जब भी हम एक्सेस में करते हैं वो हमें नहीं पता होता है ना कि वो लाइन कहाँ ड्रॉ, ये विवेक की बात आती है कि विस्टम नहीं है और ग्रीड बहुत है, तो ये जो अर्थ का इतना शोषण हो चुका है, अभी जैसे पहाड़ कितने थे, मैं कितने सिटीज़ में जाती हूँ, मैं अब की बार गई हूँ तो है, पर अगली बार जाती हूँ तो वो फ्लैट हो चुका है हिल, क्वेरीज इतनी है, उठा के सब ले जाते हैं, उसका पता नहीं बिल्डिंग बना रहे हैं कि सड़कें बना रहे हैं, पर ये पहाड़ अब बनेंगे कब, ये फॉरेस्ट्स बनेंगे कब, तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, और जो कि शायद कुछ सेंचुरीज में ही स्टेबलाइज होना शुरू होंगे, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा ग्रुप है, ग्रुप भी नहीं कहेंगे उसको, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है वर्ल्ड का जो लोवेस्ट कॉन्शियसनेस में है एज ह्यूमंस, जो सबसे नीचे का है, यानी जिसकी ग्रीड या वासनाज इतनी ज़्यादा हैं, और उन्होंने ऑलरेडी इतना अपने आप को मैसअप कर लिया है, और वो इतना मैस कर चुके हैं वर्ल्ड में कि अब उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा, तो वो तो हैं हुमंगस, इतने सारे लोग हैं और ठीक करने वाले इतने कम हैं, क्योंकि किसी को पृथ्वी के लोगों की समाज की चिंता ही नहीं कर सकते, कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये जो वर्ल्ड रिफॉर्मेशन की जो बात बताते हैं, तो ये ऋषियों का जो तरीका है वो लोग इस तरह बाहर आके काम नहीं करते कि लाइए आपका ये लैंड को हम इस तरह से ये कर दें, ये बिकॉज वो बहुत स्लो प्रोसेस है, डीफॉरेस्टेशन इतना फास्ट है, एफॉरेस्टेशन बहुत स्लो है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। पैरेलली दूसरी भी बात ये है कि जो वो करते हैं वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट उसकी गारंटी है, यानी दे आर एड्रेसिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल, पीछे से रह के वो लोगों के, क्योंकि दिमाग से माइंड से ही तो ये सब चीज़ें आई हैं, अज्ञान तो सब इसका ही है, सो वो चाहते हैं कि वर्ल्ड रिफॉर्मेशन हम कैसे करें, कि चाहे थोड़े ही लोग हों पावरफुली, अगर वो डिसिमिनेट करें डिवाइन वाइब्रेशंस ऑफ पीस, वाइब्रेशंस ऑफ रिफॉर्मेशन, वाइब्रेशंस ऑफ ब्रदरहुड, तो वो तो बहुत अच्छा एक वर्ल्ड बन जाएगा, चाहे टाइम लगेगा। सो उनका वही वाली बात है, होलिस्टिक तरीका होता है, दे डोंट बिलीव इन क्विक फिक्स सॉल्यूशंस, और कभी कभी कर भी दिया तो ठीक है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट उनका मेथड बहुत अलग है। सो 13th अर्थ बिकम्स वेरी क्रूशल, नहीं तो एक ही जन्म में किसी भी एक को इतना ज्ञान देते ही नहीं, हुआ ही नहीं, पर अभी अर्जेंट है, इट्स लाइक SOS, अगर कोई भी नहीं करेगा तो फिर डीजनरेशन ऑफ द वर्ल्ड बहुत फास्ट है ना, डीजनरेशन इज फास्टर देन रीजनरेशन। सो अभी तो जैसे एक वही वाली बात है, वो सतयुग की वेट कर रहे हैं, 10,000 साल लगेंगे, तो सबसे बड़ा काम जो था वो 2009-10 में हो चुका है उनका, 11-12 में, कि इट्स लाइक अ टाइटैनिक, मतलब कि इसको तो स्टीयरिंग ही नहीं, मतलब इसको तो टर्न ही करना बड़ा मुश्किल है, या टर्न भी नहीं, इसको स्टॉप ही कर लें एक बार, बिकॉज टर्न करने के लिए एक बार ज़ीरो पे आना ही पड़ेगा, सो ऑल दे हैव डन इज कि भाई कम से कम स्टॉप करो इसको और नहीं करो, फिर धीरे धीरे इसको टर्न करेंगे. सो दैट विल टेक 10,000 ईयर्स. और फिर कब तो ये वापस से पशु पक्षी कब वापस या किस तरह के बनेंगे, तभी तो कह रहे हैं ना जो तुम सोचते हो वो होता है. देखो तुमसे क्या बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है ना. पर इतनी जवाबदारी कोई ले तो तो वही है, इनकी सोच बहुत प्यारी है. मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कि कितनी बड़ी सोच है, कितना अच्छा सोचते हैं और कितना आसान है करना. ऑल वी हैव टू डू इज चेंज आवर सेल्स, हम वैसे बन जाएं बस, किसी को जाके कुछ कहना नहीं करना नहीं. तो सोशल वर्क तो मेरा भी है पर फर्क है. Done?